रोमियो अध्याय एक। पौलुस की तरफ से, जो यीशु मसीह की सेवा करने वाला प्रेरित है, परमेश्वर की उस खुशी की खबर के लिए अलग किया गया है, जिसका वायदा परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से ही किया था। ये वायदा परमेश्वर के बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में किया गया था। शारीरिक रूप से देखा जाए तो यीशु दाऊद राजा के वंश में से थे। जहां तक यीशु के मरे हुओं में से जी उठने की बात है, पवित्र आत्मा की शक्ति के अनुसार यीशु मसीह के परमेश्वर के बेटे होने का ऐलान किया गया। उनके द्वारा हमने बड़ी कृपा और प्रेरिताई हासिल की है, ताकि सारी दुनिया के लोग यीशु के नाम के कारण विश्वास के आज्ञा पालन के द्वारा उसके शिष्य बने। तुम भी उन्हीं में से हो जो यीशु मसीह के हो जाने के लिए बुलाए भी गए हो। रोम में रहने वाले उन सभी को, जिनसे परमेश्वर प्यार करते हैं और जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और स्वामी यीशु मसीह की तरफ से लगातार कृपा और शांति मिलती रहे। सारी दुनिया में तुम्हारे विश्वास की चर्चा हो रही है, इसलिए सबसे पहले मैं तुम सभी के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, जिनकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उनके बेटे यीशु के आनंद के समाचार के विषय करता हूँ, इस बात के गवाह हैं कि अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें याद करता रहता हूँ। ये भी विनती करता हूँ कि मुझे परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आने में कामयाबी मिल सके। मैं इस बात की चाह रखता हूँ कि वहां आकर तुम्हें कुछ आत्मिक वरदान दे सकूं, ताकि तुम आत्मा में मजबूत हो सको। वो ये कि हम आपसी विश्वास से शांति पा सकें। मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस सच्चाई से अनजान रहो कि मैंने अक्सर तुम्हारे यहां आना चाहा था, लेकिन अब तक रुकावट आती रही। मेरे आने की वजह ये थी कि जिस तरह से मुझे गैर यहूदियों में मेरी सेवकाई का फल मिल रहा है, उसी तरह तुम्हारे बीच भी कुछ मिले। मैं यूनानी और अन्य भाषियों, ज्ञानियों और अज्ञानियों का कर्जदार हूं। तुम जो रोम में हो, मैं तुम्हें आनंद के समाचार को देने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैं मसीह के सुसंदेश से शर्माता नहीं हूं, इसलिए कि आनंद का समाचार हर एक की मुक्ति के लिए जो विश्वास करता है परमेश्वर की ताकत है, चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी, क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास तक प्रकट होती है, जैसा कि लिखा है,
मुक्त हुआ इंसान विश्वास से जीवित रहेगा।
स्वर्ग से परमेश्वर का दंड उन लोगों की सारी दुष्टता और अन्याय पर प्रकट होता है जो अपने अन्याय और दुष्टता से सच्चाई को दबा देते हैं। परमेश्वर के बारे में जो कुछ जाना जा सकता है, वो उनके बीच में साफ साफ दिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ये बातें दिखाई हैं। क्योंकि इस सृष्टि की शुरुआत से उनके अनदेखे गुण साफ साफ दिखते हैं, उनकी सदाकाल की शक्ति और उनका परमेश्वरीय स्वभाव प्रकृति में देखा जा सकता है। इसलिए लोग किसी तरह का बहाना बना नहीं सकते, क्योंकि पिता परमेश्वर को जानने के बावजूद उन्होंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर जानकर उनको आदर सम्मान या धन्यवाद नहीं दिया। इसके विपरीत वे बेकार की बातें सोचने लगे और उनका मूर्खतापूर्ण मन अंधेरे से भर गया। हालांकि उन्होंने बुद्धिमान होने का दावा तो किया, किंतु वे बेवकूफ बन गए। उन्होंने परमेश्वर को नाशमान मनुष्य, चिड़ियों, चौपायों और रेंगने वाले पशुओं की समानता में बदल दिया। इसलिए परमेश्वर ने उनको मन की अभिलाषाओं के कारण होने वाली अशुद्धता के सुपुर्द कर दिया, ताकि वे आपस में एक दूसरे की देह का अपमान करें। उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई के स्थान पर झूठ को चुना और परमेश्वर को, जो सदा सम्माननीय है, छोड़कर सृष्टि की उपासना की। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें शर्मनाक इच्छाओं के हवाले कर दिया, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध को छोड़कर स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध रखने लगीं। इसी प्रकार से पुरुषों ने स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर पुरुषों के साथ यौन संबंध की कामना की। पुरुषों ने पुरुषों के साथ अभद्र व्यवहार किया और उस दंड से दुख पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था, क्योंकि जब उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान न देना चाहा, परमेश्वर ने भी उन्हें अनुचित काम करने के लिए उनके गंदे मन के हवाले कर दिया। वे सब प्रकार के दुष्टता, लालच और कड़वाहट से भरपूर हो गए। वे ईर्ष्या, हत्या, झगड़े, धोखे और दुश्मनी से भी भर गए। वे बुरा कहने वाले, चुगलखोर, परमेश्वर से नफरत करने वाले, घमंडी, डींग मार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले और माता पिता की आज्ञा न मानने वाले हैं, बिना समझ के शपथ तोड़ने वाले, स्वाभाविक प्रेम रहित, क्षमा रहित और निर्दयी भी हैं। ये जानने के बावजूद कि परमेश्वर न्यायी हैं और ऐसे काम करने वाले मौत के दंड के लायक हैं, वे न ही ये सब करते हैं लेकिन ऐसा करने वालों से खुश भी होते हैं। रोमियो अध्याय 2। इसलिए हे लोगो, तुम जो दूसरों पर टीका टिप्पणी करते हो, तुम कोई बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि जिस मुद्दे पर तुम लोगों की बुराई करते हो, तुम खुद वही करते हो। लेकिन हम ये जानते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ में परमेश्वर का इंसाफ सच्चाई के अनुसार है। हे मनुष्यों, तुम उन सभी की बुराई करते हो जो ऐसे काम करते हैं, लेकिन वही काम खुद करते हो तो क्या सोचते हो कि परमेश्वर की सजा से बच जाओगे? क्या तुम उनकी कृपा, सहनशीलता और धीरज के धन को बेकार समझते हो और ये नहीं जानते कि परमेश्वर का भला होना तुम्हें मन बदलाव सिखाता है? परंतु अपने कठोर और जिद्दी मन के कारण तुम परमेश्वरीय क्रोध के उंडेले जाने वाले दिन और सच्चे इंसाफ वाले दिन के प्रकट होने के लिए सजा को इकट्ठा कर रहे हो। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को उसके कामों के आधार पर बदला देंगे। जो लोग धीरज से भलाई करते हुए सम्मान, महिमा और अमरता की कामना करते हैं, उन्हें परमेश्वर सदा की जिंदगी देंगे। जो लोग स्वार्थ के खोजी हैं और सच्चाई को नहीं अपनाते लेकिन बुरा जीवन जीने के आदि हैं, परमेश्वर से सजा पाएंगे। प्रत्येक के ऊपर जो दुष्टता करता है, क्लेश और संकट आ पड़ेगा, पहले यहूदी व्यक्ति पर, फिर गैर यहूदी व्यक्ति पर। किंतु प्रशंसा, आदर और शांति हर उस व्यक्ति के लिए है जो भला करता है, पहले यहूदी और बाद में गैर यहूदी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। वे सब जो नियम शास्त्र की समझ के बगैर चूक गए हैं, उनका न्याय बिना नियम शास्त्र के होगा। लेकिन जिन्होंने नियम शास्त्र के पाने के बाद उसे तोड़ा है, उनका न्याय उसी को सामने रखकर किया जाएगा। इसलिए कि नियम शास्त्र सुनने वाले धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे, लेकिन वे जो नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं सिद्ध ठहराए जाएंगे। क्योंकि जब कभी गैर यहूदी, जिनके पास नियम शास्त्र नहीं है किंतु स्वभाव से ही नियम शास्त्र के अनुसार चलते हैं, तो वे अपने मन में ही नियमों का पालन करते हैं, हालांकि उनके हाथों में नियम शास्त्र नहीं है। नियम शास्त्र की बातों को वे अपने दिल में दिखाते हैं और उनके विवेक इस बात की गवाही देते हैं, और कभी कभी उनके विचार दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। यह सब उस दिन होने वाला है जब परमेश्वर मेरे संदेश के आधार पर लोगों की गुप्त बातों का न्याय यीशु मसीह के द्वारा करेंगे। तुम यदि अपने आप को यहूदी कहते हो, तुम नियम शास्त्र पर भरोसा करते हो और परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में घमंड करते हो, और तुम उनकी इच्छा जानते हो और उत्तम बातों को सही ठहराते हो, क्योंकि तुम्हें वे बातें नियम शास्त्र से सिखाई गई हैं। तुम्हें ये भरोसा है कि तुम खुद अंधों को रास्ता दिखाने वाले और जो अंधेरे में हैं उनके लिए रोशनी हो। तुम मूर्खों को सिखाने वाले, छोटे बच्चों को शिक्षा देने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे पास नियम शास्त्र में ज्ञान और सत्य के जरूरी तत्व हैं। इसलिए तुम जो दूसरों को सिखाते हो, क्या अपने आप को नहीं सिखाते? तुम सिखाते तो हो कि चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुद चोरी करते हो। तुम कहते हो कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद ही ऐसा करते हो। तुम जो मूर्तियों से नफरत करते हो, क्या खुद मंदिर को नहीं लूटते हो? तुम तो नियम शास्त्र पर घमंड तो करते हो, लेकिन नियम शास्त्र का पालन नहीं करने के द्वारा क्या परमेश्वर की बेइज्जती नहीं करते हो? जैसा कि लिखा है कि
गैर यहूदियों के बीच परमेश्वर के नाम की बदनामी तुम्हारी वजह से होती है।
यदि तुम नियम शास्त्र का पालन कर पाते हो तो खतने से कुछ फायदा है, लेकिन अगर तुम नियम शास्त्र के तोड़ने वाले हो तो खतना वाले होने के बावजूद भी बेखतना वाले हो जाते हो। इसीलिए अगर कोई खतना न कराने वाला नियम शास्त्र की धार्मिकता को मानता है तो उसका खतना रहित होने के बावजूद वो खतने वाला क्यों न कहलाएगा? अगर एक आदमी का शारीरिक खतना नहीं हुआ है और वह नियम शास्त्र के अनुसार जीवन बिताता है तो तुम ही बताओ, तुमने लिखित नियम शास्त्र को पाया और खतना भी कराया है, लेकिन तुम नियम शास्त्र का पालन नहीं करते हो, ऐसे में क्या वो तुम्हें आरोपी नहीं ठहराएगा? वह व्यक्ति यहूदी नहीं जो सिर्फ यहूदी माँ बाप से पैदा हुआ है, न ही वह खतना कुछ मायने रखता है जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। जो भीतर से यहूदी है वो सच्चा यहूदी है, और मन का खतना वही है जो परमेश्वर के आत्मा से है, न कि लिखे हुए नियमों के पालन से। ऐसे आदमी की तारीफ लोगों से नहीं लेकिन परमेश्वर की तरफ से होती है। रोमियो अध्याय 3। एक यहूदी होने से क्या लाभ या खतना कराने से क्या फायदा है? इसके बहुत फायदे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन उन्हें सौंपे गए थे। अगर कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया तो क्या हुआ? क्या उनका अविश्वास परमेश्वर की सच्चाई को असरहीन बना सकता है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर सच ठहरे और हर एक व्यक्ति झूठा, जैसा कि लिखा है,
तुम अपनी कही हुई बातों में खरे ठहराए जा सको और जब तुम्हारा इंसाफ हो तब जीत पा सको।
अगर हमारी अधार्मिकता परमेश्वर की विश्वास योग्यता को दिखाती है तो हम क्या कहें? क्या मनुष्य पर दंड लाने के कारण परमेश्वर अन्यायी है? मैं मनुष्य होने के नाते ऐसा कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब परमेश्वर लोगों का इंसाफ कैसे करेंगे? इसलिए कि यदि मेरे झूठ बोलने से परमेश्वर की सच्चाई उनकी इज्जत बढ़ाती है तो मैं परमेश्वर की दृष्टि में दोषी क्यों ठहरूं? इसके बजाय हम ये क्यों न कहें, जैसा कि हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम ऐसा मानते हैं, आओ हम बुराई करें ताकि उससे भलाई उत्पन्न हो, उन्हें दोषी ठहराया जाना उचित है। तब क्या कहा जाए? क्या हम उनसे अच्छे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि हम पहले ही से ये दोष लगा चुके हैं कि दोनों यहूदी और गैर यहूदी परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी हैं, जैसा लिखा है,
कोई भी व्यक्ति धर्मी और खरा नहीं है, यहाँ तक कि एक भी नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समझ हो या जो परमेश्वर के लिए भूखा हो। वे सभी गुमराह हो चुके हैं, वे सब किसी काम के नहीं रहे, ऐसा कोई नहीं जो कोमलता दिखाता हो, एक भी नहीं। उनका गला खुली कब्र के समान है, वे अपनी जीभ से झूठ बोलते हैं, उनके ओंठों के नीचे सांप का जहर है, उनका मुंह शाप और कड़वाहट से भरा है, उनके पैर खून बहाने के लिए फुर्तीले हैं, उनकी राहों में बर्बादी और तकलीफें हैं, वे चैन के रास्ते को नहीं जानते हैं, उनकी आंखों में परमेश्वर का डर नहीं है।
अब हम ये जानते हैं कि जो कुछ नियम शास्त्र कहता है वह उन्हीं से कहता है जो उसको मानने वाले हैं, ताकि हर एक मुंह को बंद किया जा सके और सारी दुनिया परमेश्वर के सामने जिम्मेदार ठहरे। इसलिए सिर्फ नियम शास्त्र के पालन करने से कोई व्यक्ति परमेश्वर की निगाह में धर्मी ठहराया नहीं जाएगा, क्योंकि नियम शास्त्र ही के द्वारा मालूम पड़ता है क्या बुरा है और क्या नहीं। लेकिन परमेश्वर ने एक रास्ता हमें दिखा दिया है कि बिना उन नियमों के पालन जिनका वायदा मूसा और नबियों की किताब में है, किस तरह परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम किया जाए। परमेश्वर से मिलने वाली धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हासिल होती है, सभी विश्वास करने वालों के लिए है, चाहे वे कोई भी क्यों न हो। सभी ने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया है और परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हैं। लेकिन जो छुड़ाया जाना मसीह यीशु में उनकी महान कृपा से है, उसके द्वारा वे मुफ्त में सजा मुक्त किए गए हैं। जिस अनुग्रह के स्थान पर विश्वास से पहुंचते हैं, वहां पर उनकी कुर्बानी के समय परमेश्वर ने उन्हें सबके सामने रखा। यह उन्होंने इसलिए किया ताकि इस समय उनकी विश्वास योग्यता दिखाई दे और वह यीशु पर विश्वास करने वाले को बिना किसी दोष का ऐलान करें। फिर घमंड करना कहां रहा? इसकी तो कोई जगह ही नहीं है। अगर है तो किस सिद्धांत से? कामों के सिद्धांत से नहीं, लेकिन विश्वास के जरिए। इससे हम ये निचोड़ निकालते हैं कि नियम शास्त्र के कामों से अलग विश्वास ही से एक व्यक्ति धर्मी घोषित किया जाता है। क्या वह केवल यहूदियों के परमेश्वर है? क्या वह गैर यहूदियों के भी नहीं? हाँ, यहूदियों और गैर यहूदियों के भी हैं। इसलिए जब खतना वाले और खतनाहीन को एक ही परमेश्वर विश्वास से क्षमा देते हैं, तब क्या विश्वास की अहमियत की वजह से हम नियम शास्त्र को अलविदा कह दें? बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत हम नियम शास्त्र को उसका उचित आदर सम्मान देते हैं। रोमियो अध्याय 4। सो हम क्या कहें? अब्राहम, जो शरीर के अनुसार हमारा पूर्वज है, विश्वास से मुक्ति के प्रश्न पर क्या अनुभव रखता था? क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों के द्वारा सिद्ध ठहराया गया होता तो उसका घमंड करना ठीक था, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं। इसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये विश्वास करना उसके लिए विश्वास योग्यता गिना गया। जो मेहनत करता है उसकी मजदूरी इनाम नहीं है, लेकिन वह उसका हक बनता है। परंतु जो मेहनत नहीं करता, लेकिन परमेश्वर जो दुष्ट को पवित्र ठहराते हैं उन पर भरोसा करता है, उसका विश्वास उस व्यक्ति के लिए विश्वास योग्यता गिना जाता है। जैसा राजा दाऊद भी उस व्यक्ति को आशीषित कहता है जिसे परमेश्वर द्वारा कामों के आधार पर नहीं, लेकिन विश्वास के आधार पर धर्मी ठहराया जाता है।
आशीषित वे हैं जिनके गुनाह माफ किए गए और जिनकी दुष्टता ढांक दी गई। आशीषित व्यक्ति वह है जिसे मुजरिम ना ठहराया गया हो।
क्या इस वचन से सिर्फ खतना वाले ही आशीष पाते हैं या बिना खतना वाले भी? क्योंकि हमारा कहना है कि अब्राहम विश्वास से धर्मी ठहराया गया था। अब्राहम कब धर्मी ठहराया गया? खतने के पहले या खतने के बाद में? खतने के बाद नहीं, लेकिन इससे पहले, जब वह खतना रहित था, उसने खतने का निशान पाया जो विश्वास से अपनाए जाने की मुहर थी। साथ ही यह कि विश्वास के द्वारा अब्राहम उन लोगों का भी पिता हो सके जो खतना रहित दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहराए जाएं। अब्राहम खतना वालों के ही पिता नहीं है, लेकिन उनका भी है जो अब्राहम के विश्वास के पद चिन्हों पर चलते हैं, जिसके पास खतना रहित स्थिति में विश्वास था। अब्राहम या उसके वंश तक दुनिया को विरासत में पाने की प्रतिज्ञा मूसा के नियम शास्त्र से नहीं पहुंची, लेकिन विश्वास से मिलने वाली धार्मिकता से। इसलिए कि अगर लोग नियम शास्त्र की वजह से वारिस हैं, तो विश्वास बेकार ठहरा और प्रतिज्ञा भी बेअसर हुई, क्योंकि नियम शास्त्र के पालन नहीं किए जाने से प्रकोप पैदा होता है। लेकिन जहां नियम शास्त्र है ही नहीं, उसके तोड़े जाने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए वायदा विश्वास का नतीजा है और विश्वास पर निर्भर भी है, ताकि अब्राहम के वंश के लिए वायदा निश्चित रूप से काम करे, सिर्फ उनके लिए नहीं जो नियम शास्त्र के मानने वाले हैं, लेकिन उनके लिए भी जो अब्राहम का सा विश्वास रखने वाले हैं, जो कि हम सब का पिता है, जैसा कि लिखा है,
मैंने तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाया है जिन पर उसने विश्वास किया।
उनकी मौजूदगी में अब्राहम हमारा पिता है। वह परमेश्वर मरे हुओं को जिंदा करते हैं, जो बातें हैं नहीं उन्हें इस तरह कहते हैं जैसे कि वास्तव में वे हैं। कोई आशा न होने पर भी अब्राहम ने भरोसा किया कि जो कुछ उससे कहा गया था कि
तुम्हारा वंश ऐसा होगा,
या
तुम्हारी संतान तारों के समान असंख्य होगी।
उसी कथन के अनुसार वो बहुत से देशों का पिता बना। अब्राहम विश्वास में डगमगाया नहीं था। 100 साल का होने के बावजूद भी उसने न अपनी देह को और न सारा की कोख को मरा हुआ समझा। शक के कारण वो परमेश्वर के वायदों पर लड़खड़ाया नहीं, लेकिन परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ विश्वास में मजबूत बना रहा और परमेश्वर की प्रशंसा की। वो पूरी तरह से निश्चिंत था कि जैसा वायदा उसे मिला है परमेश्वर वैसा करने के योग्य हैं। इसलिए उसका यह भरोसा उसके नाम पर विश्वास योग्यता गिना गया। यह केवल अब्राहम के लिए नहीं लिखा गया था, लेकिन हमारे लिए भी लिखा गया था कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करें जिन्होंने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया था, और ये कि हमारे अपराधों के कारण यीशु मारे गए और हमें खरा ठहराने के लिए वो जिलाए गए। रोमियो अध्याय 5। इसलिए जब हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सुधर गया है। विश्वास के द्वारा हमारी पहुंच उस शर्तहीन कृपा तक होती है जिसमें आज तक हम बने हुए हैं और परमेश्वर की महिमा की आशा में खुश होते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने सताव में भी खुश हों, ये जानते हुए कि सताव सहते रहने से धीरज पैदा होता है, धीरज वाली सहनशीलता से चरित्र बनता है और ग्रहण योग्य चरित्र से आशा। आशा किसी भी तरह से निराश नहीं करती है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर पिता का प्यार उन्होंने हमारे दिलों में डाला है। जब हम अपनी असहाय अवस्था में थे तब ही यीशु परमेश्वर रहित लोगों के लिए मरे। शायद ही कोई किसी भले व्यक्ति के लिए जान देने के लिए तैयार हो, किंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम को इस तरह दिखाते हैं कि जब हम दोषी ही थे यीशु मसीह हमारे लिए मर गए। इससे अधिक ये कि जब उनके खून से हम आरोप मुक्त घोषित किए गए हैं तो हम यीशु के द्वारा परमेश्वर की सजा से क्यों नहीं बचेंगे। इसलिए कि जब हम परमेश्वर के दुश्मन थे, उनके बेटे की मौत से हमारा उनके साथ मेल हो गया है, तो उनके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, हम मसीह यीशु में होकर परमेश्वर पिता में भी खुश होते हैं जिनसे हमने इस रिश्ते को पाया है। इसलिए जिस तरह एक इंसान के द्वारा पाप दुनिया में आया और पाप के द्वारा मौत, इसलिए सभी के पाप करने की वजह से मौत सब लोगों में फैल गई। नियम शास्त्र के दिए जाने तक पाप दुनिया में था, लेकिन जहां नियम शास्त्र नहीं है वहां पाप के होने की बात ही नहीं। इसके बावजूद मौत ने आदम से लेकर मूसा तक शासन किया, उन लोगों पर भी जिन्होंने आदम की आज्ञा न मानने के समान अपराध नहीं किया था। आदम दूसरे आने वाले का ही एक नमूना है, लेकिन मुफ्त इनाम की तुलना अपराध से नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस तरह एक व्यक्ति के अपराध के कारण बहुत से मर गए, उसी तरह एक ही इंसान की कृपा द्वारा परमेश्वर की कृपा से इनाम बहुत लोगों तक है। इस इनाम की तुलना पाप के उस परिणाम से नहीं की जा सकती है जो प्रथम मनुष्य आदम के आज्ञा न मानने से हुआ था, क्योंकि न्याय एक व्यक्ति के द्वारा आया और उससे लोग दोषी ठहरे, लेकिन जो मुफ्त धार्मिकता तमाम अपराधों के बाद आई वह हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए थी। इसलिए कि जब एक इंसान के अपराध के कारण मौत ने राज्य किया, तो और कितना अधिक जो लोग कृपा की भरपूरी और धार्मिकता के इनाम को पाते हैं जीवन में उस ही यीशु मसीह के द्वारा राज्य करेंगे। इसलिए जिस तरह से एक व्यक्ति के अपराध के कारण सजा सभी लोगों के ऊपर आई और सभी दोषी ठहरे, उसी तरह से एक मनुष्य के सही कदम से सारी मानव जाति का मुफ्त इनाम निर्दोषता है। इसलिए कि जिस तरह एक व्यक्ति के आज्ञा न मानने से बहुत लोग अपराधी ठहरे, उसी तरह से एक व्यक्ति के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहराए जाएंगे। इसके अलावा नियम शास्त्र इसलिए आया ताकि बुराई का खुलासा हो सके, किंतु जहां पाप का खुलासा हुआ कृपा और अधिक बढ़ गई, ताकि जिस प्रकार से पाप ने मौत में शासन किया, वैसे ही कृपा भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सदाकाल के जीवन में प्रकट हो। रोमियो अध्याय 6। तो हम क्या कहें? क्या हम दुष्टता में इसलिए बने रहें ताकि बहुत अधिक मात्रा में शर्तहीन कृपा हासिल कर सकें? बिल्कुल नहीं। यह कैसे संभव है कि जब हम एक बार दुष्टता के लिए मर चुके, फिर से दुष्टता वाला जीवन जिए? क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि हम जितनों को यीशु मसीह में बपतिस्मा दिया गया, वह यीशु की मौत में बपतिस्मा था? इसलिए हम बपतिस्मे में यीशु के साथ मौत में गाड़े गए, ताकि जिस तरह से परमेश्वर की शक्ति से यीशु मसीह जिलाए गए, हम उसी तरह जीवन के नएपन में जी सकें। क्योंकि यदि हम यीशु की मौत की समानता में जोड़ दिए गए हैं, तो हम उनके जी उठने की समानता में भी जोड़ दिए जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, ताकि गुनाह का शरीर बेकार हो जाए और अब से हम पाप की सेवा न करें। क्योंकि जो मसीह के साथ मर चुका है, वह गुनाह से मुक्त किया जा चुका है और धर्मी है। अब यदि हम मसीह के साथ मर चुके हैं, हमें विश्वास है कि हम मसीह के साथ जीवित भी रहेंगे। ये जानते हुए कि मसीह जो मरे हुओं में से जिलाए गए, फिर से मरेंगे नहीं, अब उनके ऊपर मौत का अधिकार नहीं रह गया। क्योंकि जब वे एक बार मर गए, तो ये मौत पाप के लिए सदाकाल की मौत थी, किंतु जो जीवन वो जीते हैं, वो परमेश्वर के लिए जीते हैं। इसी प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, लेकिन हमारे स्वामी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवित समझो। इसलिए मरणहार देह के ऊपर पाप को अधिकार मत दो कि तुम इसकी लालसाओं की मानो। अपनी देह के अंगों को अधार्मिकता के हथियार होने के लिए पाप को मत सुपुर्द करो, लेकिन मरे हुओं में से जी उठे हुओं के समान खुद को और देह के अंगों को सही चाल चलन के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। पाप तुम्हारे ऊपर शासन न कर सके, क्योंकि तुम नियम शास्त्र के अधीन नहीं, शर्तहीन असीमित कृपा के अधीन हो। तो फिर क्या? इसलिए कि हम नियम शास्त्र के अधीन नहीं, असीमित कृपा के अधीन हैं, क्या हम पाप में बने रहें? बिल्कुल नहीं। क्या तुम ये नहीं जानते हो कि तुम गुलाम के रूप में जिसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दे देते हो, उसी के तुम गुलाम हो? या तो गुनाह के गुलाम जो मौत तक ले जाता है, या आज्ञाकारिता के गुलाम जो धार्मिकता की ओर ले चलती है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हालांकि तुम गुनाह के गुलाम थे, तुमने मन से उस शिक्षा को माना है जो तुम्हें दी गई है। इसलिए अनुग्रह से आजाद किए जाने के बाद तुम सच्चाई के गुलाम बन गए। गुलामों और उनके रखने वालों का उदाहरण देकर मैं कहता हूं, क्योंकि इस तरह से समझना आसान है। पहले तुम अशुद्धता और कानूनहीनता के गुलाम थे, अब खरे जीवन के गुलाम होने का चुनाव तुम्हें करना ही चाहिए, ताकि तुम पवित्र हो जाओ। क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे, तब तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि जो कुछ उचित है वही किया जाए। जिन बातों में अभी तुम शर्म महसूस करते हो, पुराने समय में तुम्हें उन बातों से क्या फायदा होता था? क्योंकि उन सभी बातों का अंत मौत है। लेकिन अब पाप से मुक्त होकर परमेश्वर के गुलाम बन गए हो। अब तुम वो सब करते हो जिससे पवित्रता मिलती है और जिसका परिणाम है हमेशा का जीवन। इसलिए कि पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन हमारे स्वामी यीशु मसीह में परमेश्वर का इनाम अनंत जीवन है। रोमियो अध्याय 7। हे भाइयों बहनों, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि मैं उन लोगों को लिख रहा हूं जिन्हें परमेश्वर के दिए गए नियमों का ज्ञान है? वह यह कि इस पृथ्वी के जीवन भर एक व्यक्ति उन नियमों का पाबंद है। उदाहरण के लिए, जब तक पति जीवित है, तब तक कानून के हिसाब से एक शादीशुदा स्त्री अपने पति से बंधी है, किंतु जब उसका पति मर जाता है, तब वह विवाह के कानून से मुक्त हो जाती है। इसलिए यदि उसके पति के जीते जी वो किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है वो वैश्या कहलाएगी, किंतु यदि उसका पति मर जाता है तो उसके पति के साथ उसका वैवाहिक बंधन टूट जाता है, ऐसे में किसी पुरुष से विवाह करने पर वो वैश्या नहीं हुई। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, तुम मसीह की देह से नियम शास्त्र के लिए मर गए, ताकि तुम मरे हुओं में से जिलाए जाकर मसीह के हो जाओ और परमेश्वर के लिए फल लाओ। जब हम बुरे स्वभाव के वश में थे, तब नियमों की अधीनता की वजह से उठी बुरी अभिलाषाएं हमारी देह में कार्य कर रही थी, जिससे हम मौत के लिए परिणाम उत्पन्न कर रहे थे। जिस बात ने हमें अपने वश में रखा था, अब उसके लिए मर जाने से हम नियमों की अधीनता से छुड़ाए गए हैं, ताकि पवित्र आत्मा के नए तरीके से सेवा करें, न कि रीति विधियों और बलिदानों के चढ़ाने से। तो हम क्या कहें? क्या नियम शास्त्र बुरा है? नहीं, बिना नियम शास्त्र के द्वारा बुरा क्या है यह मैं जान नहीं पाता। उदाहरण के लिए, यदि परमेश्वर ने यह दोहराया न होता कि
तुम लालच मत करो,
तो लालच क्या है यह नहीं जाना जाता। आज्ञा दिए जाने के कारण मेरे भीतर गुनाह ने अवसर पाकर तमाम प्रकार की लालसा को उत्पन्न कर डाला। एक समय था जब मैं नियमों आज्ञाओं से हटकर जीवन बिता रहा था, किंतु जब नियम आज्ञाएं दी गईं, पाप फिर से जागृत हो गया और मैं मर गया। जिस आज्ञा से अपेक्षा ये थी कि वो जीवन लाएगी, वही मौत लेकर आई। इसलिए कि बुराई ने आज्ञा की मदद से फायदा उठाकर मुझे धोखा दिया और मुझे आज्ञा से मार डाला। इसलिए परमेश्वरीय आज्ञाएं पवित्र, अच्छी और खरी हैं। जो अच्छा है, क्या वो मेरे लिए मौत बन सकता है? बिल्कुल नहीं। परंतु इसलिए कि पाप बुरा ही दिख सके, जो कुछ अच्छा था उसने मुझ में मौत पैदा की, ताकि आज्ञा के द्वारा पाप अधिकाई से बुरा दिख सके। हम जानते हैं कि नियम शास्त्र आत्मिक है, किंतु मैं आत्मिक नहीं हूं और पाप के हाथ गुलाम के रूप में बिका हुआ हूं। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करता हूं, क्योंकि जो कुछ मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता, लेकिन वही करता हूं जिससे मुझे नफरत है। यदि मैं वो करता हूं जो नहीं करना चाहता, मैं ये मान लेता हूं कि मूसा द्वारा दिए नियम और आज्ञाएं अच्छी हैं। ऐसी स्थिति में इसका करने वाला मैं नहीं, लेकिन मुझ में बसा हुआ पुराना स्वभाव है। मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरी देह में कुछ भी अच्छा नहीं है। जिस अच्छे काम की मैं चाह करता हूं वो नहीं कर पाता हूं, जो बुरा मैं नहीं करना चाहता हूं वही करता रहता हूं। यदि मैं वो करता हूं जो नहीं चाहता, तो उसका करने वाला मैं नहीं हूं, लेकिन मुझ में बसा हुआ बुरा स्वभाव है। मैं यह प्रवृत्ति अपने भीतर पाता हूं कि जब मैं भला करना चाहता हूं तो बुराई मुझे धर दबोचने के लिए तैयार है। मैं अपने भीतर परमेश्वर की बातों से खुश रहता हूं, किंतु मेरी देह के अंगों में दूसरे कामों को देखता हूं, जो मेरे मन के विचारों से लड़ाई करके मुझे मेरे अंगों में कार्य करने वाली बुरी कार्य प्रणाली का गुलाम बनाती है। मैं कैसा असहाय मनुष्य हूं, मुझे इस मौत की देह से कौन आजाद करेगा? मैं अपने स्वामी यीशु मसीह परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं अपने मन में तो नियम और आज्ञाओं का गुलाम हूं, किंतु बुरे स्वभाव में पाप की प्रणाली का गुलाम हूं। रोमियो अध्याय 8। इसलिए जो लोग मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु में जो जीवन है, उस जीवन की आत्मा के नियम ने मुझे पाप और मौत के क्रम से आजाद कर दिया है। परमेश्वर द्वारा दी गई आज्ञाएं और नियम पुराने स्वभाव के कारण अपने में बलहीन थे। उसे परमेश्वर ने अपने बेटे को पापमय करके बलिदान चढ़ा दिया, और परमेश्वर ने अपराध को पापमय स्वभाव में दोषी ठहराया, ताकि नियमों और आज्ञाओं की उचित मांग हम में, जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। जो लोग बुरे स्वभाव के आधार पर जीवन जीते हैं, वे अपनी लालसाओं पर अपने मन को लगाते हैं, किंतु जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलते हैं वे परमेश्वर के आत्मा की इच्छाओं पर ध्यान लगाते हैं। शरीर के वश में होकर चलने से मौत मिलती है, लेकिन जो मन परमेश्वरीय आत्मा द्वारा अनुशासित किया जाता है वहां जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से दुश्मनी रखना है। यह परमेश्वरीय विधान के प्रति अधीनता न स्वीकार करता है न कर सकता है। जो लोग बुरे स्वभाव के शिकंजे में हैं, वे परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। यदि परमेश्वरीय आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है तो तुम बुरे स्वभाव की गुलामी में नहीं हो, लेकिन आत्मिक दशा में हो। और यदि ऐसा है तो परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह मसीह का जन नहीं है। यदि मसीह तुम में है तो हालांकि पाप के कारण तुम्हारी देह मरी हुई है, फिर भी धार्मिकता के कारण तुम्हारी आत्मा जीवित है। परंतु यदि परमेश्वर का आत्मा जिन्होंने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया तुम्हारे भीतर है, तो जिन्होंने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया उस आत्मा के द्वारा जो तुम्हारे भीतर है तुम्हारी मरणशील देह को भी जिलाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, हम बुरी इच्छा या बुरे स्वभाव के कर्जदार नहीं कि हम उसकी बात मानकर चलें, क्योंकि यदि तुम उस पुराने स्वभाव के अनुसार जियोगे तो मरोगे, किंतु यदि पवित्र आत्मा के द्वारा देह के गंदे कामों को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जो लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवन बिताते हैं वे ही उनके बेटे बेटियां हैं। इसलिए कि तुमने ऐसा आत्मा नहीं पाया है जो तुम्हें डर का गुलाम बनाता है, लेकिन तुमने लेपालकपन का आत्मा पाया है, इसलिए हम उन्हें पिता कहकर पुकारते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारी खुद की आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। यदि हम उनकी औलाद हैं तो हम वारिस हैं, अर्थात मसीह के साथ वारिस और परमेश्वर पिता के वारिस। यदि ऐसा है तो हम मसीह के दुखों में भागी होते हैं और तभी हम उनके सम्मान और आदर में भी शामिल हो सकेंगे। मुझे लगता है कि हमारा इन दिनों का दुख उस सम्मान के सामने जो हम पर प्रकट किया जाएगा तुलना करने लायक नहीं है। सृष्टि बड़ी उत्सुकता से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का इंतजार कर रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से बर्बादी के लिए अधीन नहीं की गई थी, बल्कि उनकी इच्छा से जिन्होंने इसे अधीन कर दिया था। वह भी इस आशा से कि सृष्टि गुलामी और सड़ाहट से छुड़ाई जाकर परमेश्वर की संतान की अद्भुत आजादी में लाई जाए। हम जानते हैं कि अब तक पूरी सृष्टि मानो प्रसव की सी पीड़ा के समान कराह रही है। मात्र सृष्टि ही नहीं, हम स्वयं जिनके पास पवित्र आत्मा का पहला फल है, हम भी अपने में कराह रहे हैं और गोद लिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसी आशा के लिए हमने मुक्ति भी पाई है। परंतु यदि अपेक्षित वस्तु दिखने लग जाए तो वह आशा नहीं, क्योंकि जिसे व्यक्ति देखता है उसकी आशा क्यों करता रहेगा। लेकिन यदि हम देखने वाली बात के लिए आशा रखते हैं तो हम उसके लिए धीरज से आशा रखते हैं। इसी प्रकार से पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें क्या और कैसे मांगना चाहिए, किंतु परमेश्वर का आत्मा स्वयं हमारे लिए ऐसी आहें भरकर प्रार्थना करता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जो दिलों को परखते हैं जानते हैं कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है, क्योंकि वह अलग किए हुए लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। हम जानते हैं कि जिन्हें परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाया गया है और जो उनसे प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ भले के लिए होता है। इसलिए कि जिनको परमेश्वर ने पहले से जान लिया था उनके बारे में यह इरादा भी कर लिया कि वे उनके बेटे यीशु की तरह हों, ताकि यीशु तमाम संगी विश्वासियों में सर्वश्रेष्ठ ठहरें। इसके साथ ही जिन्हें पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें निर्दोष घोषित किया, और जिन्हें धर्मी घोषित किया उन्हें आदर और सम्मान भी दिया। इन बातों के संबंध में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे संग हैं, तो हमारा दुश्मन कौन है? जिन्होंने अपने बेटे तक को बचाकर नहीं रखा, लेकिन उन्हें हम सभी के लिए दे दिया, वह यीशु के साथ हमें मुफ्त में सब कुछ क्यों नहीं देंगे? परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विरोध में कौन आरोप साबित करेगा? परमेश्वर स्वयं उन लोगों को दोष मुक्त और सिद्ध साबित कर चुके हैं, कौन उन्हें दोषी ठहराएगा? मसीह ही हैं जो मर गए थे, और इससे बढ़कर यह कि वह जिलाए गए और अभी सर्वोच्च अधिकार के साथ परमेश्वर के साथ हैं, और वह हमारे लिए मध्यस्थ हैं। मसीह के प्यार से हमें कौन अलग करेगा? क्या क्लेश, सताव, अकाल, कपड़ों की कमी, समस्या या हिंसा? जैसा कि लिखा है,
तुम्हारे कारण हम पूरे दिन मारे जाते हैं, हमें काटी जाने वाली भेड़ें समझा जाता है।
नहीं, इन सभी में जिस प्रभु ने हमसे प्रेम किया, उनमें हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। इसलिए मुझे यह निश्चय है कि न मौत, न जीवन, न स्वर्गदूत, न शासक, न शक्तियां, न वर्तमान और न आने वाले समय की बातें, न ऊंचाई, न गहराई, न और कोई भी सृजी वस्तु हमें परमेश्वर के उस प्यार से अलग कर सकती है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। रोमियो अध्याय 9। मैं मसीह में सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही दे रहा है कि मेरे दिल पर एक भारी बोझ और बना रहने वाला दुख है। अच्छा होता कि जो लोग मेरी बिरादरी के यानी कि इसराइली हैं, मैं उनके कारण मसीह के द्वारा सजा लायक ठहरता। लेपालकपन का हक और महिमा, वाचा, नियमों आज्ञाओं का दिया जाना, परमेश्वर की सेवा और वायदे उन्हीं की हैं, पूर्वज उन्हीं के हैं। जहां तक देह का सवाल है, मसीह यहूदियों में से आए थे जो सबके ऊपर हैं, परमेश्वर हैं और सदा सदा के लिए बढ़ाई के लायक हैं, ऐसा ही हो। ऐसा नहीं कि परमेश्वर का कहा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जो इसराइल के वंशज हैं वे सभी इसराइली नहीं हैं, वे सभी अब्राहम की संतान भी नहीं हैं। हालांकि वे अब्राहम के वंश के हैं, किंतु लिखा है,
इसहाक के नाम पर तुम्हारा वंश कहलाएगा।
इसका मतलब यह है कि जो लोग मात्र दैहिक रीति से यहूदी वंश में जन्मे हैं, वे परमेश्वर की संतान नहीं, किंतु वास्तव में प्रतिज्ञा की संतान ही वास्तविक संतान कहलाएगी। प्रतिज्ञा ये थी,
इस समय मैं आऊंगा और सारा का एक बेटा होगा।
यही नहीं, जब रिबका भी इसहाक से गर्भवती हुई, वे बच्चे जो पैदा नहीं हुए थे, न ही उन्होंने भला बुरा किया था, ताकि परमेश्वर का वह उद्देश्य बना रहे जो कामों पर नहीं लेकिन उनके चुनाव पर निर्भर है। और परमेश्वर जो स्वयं बुलाते हैं, उससे कहा गया था,
बड़ा छोटे की सेवा करेगा।
जैसा लिखा है, मैंने याकूब को अपनाया लेकिन एसाव को नहीं अपनाया। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर अन्यायी है? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि वह मूसा से कहते हैं,
जिस किसी पर मैं दया करना चाहूं मैं करूंगा,
और जिस किसी पर करुणा दिखाना चाहूं मैं दिखाऊंगा। इसलिए परमेश्वर की भलाइयों को कोशिश करने या मनोकामना से हासिल नहीं किया जा सकता। पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर ने मिस्र के राजा फिरौन से कहा,
मैंने तुम्हें इसलिए खड़ा किया है ताकि अपनी ताकत को तुम्हारे बीच दिखाऊं और मेरे नाम की घोषणा सारी दुनिया में की जाए।
इसलिए जिन लोगों पर वो चाहें अपनी दया दिखाएंगे, और जिनको कठोर करना चाहेंगे उन्हें कर देंगे। तब तुम मुझसे कहोगे कि परमेश्वर फिर गलती क्यों ढूंढते हैं? किसने उनकी इच्छा का विरोध किया है? हे मनुष्य, तुम कौन हो कि परमेश्वर से जवाब की मांग करते हो? क्या कोई वस्तु अपने बनाने वाले से पूछ सकती है, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार को यह छूट नहीं कि वह मिट्टी के एक ही लोंदे से एक बर्तन विशेष उपयोग के लिए और दूसरा साधारण उपयोग के लिए बनाए, परमेश्वर ने, जो अपने गुस्से और ताकत को दिखाने के लिए तैयार थे, सजा के पात्रों को, जिन्हें बर्बाद होना था, बड़े धीरज से सहा, ताकि दया के पात्रों को, जिन्हें अपनी महिमा के लिए पहले से तैयार किया, उन पर अपनी महिमा प्रकट करे। इनमें हम सभी बुलाए हुए लोग हैं, चाहे वे यहूदियों में से हैं, चाहे गैर यहूदियों में से। जैसा होशे की पुस्तक में लिखा है,
जो मेरे लोग नहीं थे, मैं उन्हें अपने लोग कहूंगा।
ऐसा होगा कि जिस स्थान में उनसे कहा गया था, तुम मेरे लोग नहीं हो, वहीं उन्हें परमेश्वर पिता की संतान कहा जाएगा। इसराइल के बारे में यशाया पुकार कर कहता है,
चाहे इसराइल के वंश की संख्या समुद्र की रेत के समान हो, किंतु मुट्ठी भर लोग ही बचाए जाएंगे, इसलिए कि परमेश्वर पृथ्वी पर अपने कार्य को अच्छी तरह से जल्दी ही पूरा करेंगे।
एक दूसरे स्थान पर यशाया कहता है कि
यदि सेनाओं के प्रभु परमेश्वर की कृपा दृष्टि न हुई होती तो सभी यहूदी नाश कर दिए जाते, ठीक उसी तरह जिस तरह से सदोम और अमोरा नामक शहरों के लोग बर्बाद हो गए।
फिर क्या कहा जाए? यह कि गैर यहूदी परमेश्वर के सामने खरा या निर्दोष ठहराए जाने की चाहत न रखते हुए भी निर्दोष ठहरे, क्योंकि वह आशीष उन्होंने विश्वास ही से हासिल कर ली। लेकिन निर्दोष ठहराए जाने की आशीष को अपने नियमों के पालन करने से चाहता था, लेकिन न पा सका। ऐसा क्यों? यह इसलिए क्योंकि उन्होंने विश्वास के बजाय नियमों के पालन करने से इसे प्राप्त करना चाहा था। वे ठोकर खाने वाले पत्थर के कारण ठोकर खा गए, जैसा लिखा है,
देखो मैंने यहूदियों के बीच सियोन में एक ऐसा पत्थर अर्थात यीशु रखा है, जिसे वे न चाहेंगे, लेकिन जो कोई उन पर विश्वास करता है वह शर्मिंदा नहीं होगा।
रोमियो अध्याय 10। भाइयों बहनों, इसराइल के लिए मेरी लालसा और प्रार्थना यह है कि वे बच जाएं। मैं उनके विषय कह सकता हूं कि उनके मन में परमेश्वर पिता के लिए जोश है, किंतु यह सच्चाई पर नहीं टिका हुआ है, क्योंकि वे परमेश्वर द्वारा दी गई धार्मिकता के बारे में अनजान हैं, तथा अपने आप को धर्मी साबित करने की स्वयं कोशिश करते हैं। इसलिए उन्होंने परमेश्वर से मिली सिद्धता के प्रति समर्पण करने से इनकार कर दिया है। इसलिए कि जो कोई विश्वास करता है उसके लिए मसीह नियमों आज्ञाओं का अंत है। नियम शास्त्र के हिसाब से जो धार्मिकता है उसका वर्णन मूसा इस तरह से करता है,
जो व्यक्ति उन बातों का पालन करता है वह उनके द्वारा जीवित रहेगा।
जो धार्मिकता विश्वास पर आधारित है इस तरह से बात करती है, अपने दिलों में न कहो कौन स्वर्ग में जाएगा या अधोलोक में कौन उतरेगा, लेकिन यह क्या कहता है? यह कि
वचन तुम्हारे पास है, तुम्हारे मुंह और मन में है।
यही वह वचन है जो हम सुनाते हैं। विश्वास यह कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु प्रभु को मान लो और मन में यह विश्वास करो कि परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जिलाया, तो तुम मुक्ति पाओगे। खरा ठहरने के लिए हृदय से भरोसा किया जाता है और मुक्ति के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, जैसा कि पहले ही से बाइबल में कहा जा चुका है,
जो कोई उन पर विश्वास करता है वह कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा।
इसलिए कि यहूदी और गैर यहूदियों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वही स्वामी उन सभी के ऊपर हैं जो उनको पुकारते हैं। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह बच जाएगा, जिन पर उन लोगों ने विश्वास नहीं किया वे उन्हें क्यों पुकारेंगे? जिन्होंने विश्वास नहीं किया वे यीशु पर विश्वास कैसे करेंगे? तथा बिना किसी संदेश देने वाले के भेजे जाने से लोग कैसे संदेश सुनेंगे? जिनके बारे में उन्होंने सुना नहीं उन पर वे कैसे विश्वास करेंगे? संदेश देने वाले व्यक्ति के बगैर वे सुनेंगे कैसे? और यदि संदेश देने वाले भेजे न जाएं, तो वे कैसे संदेश देंगे? जैसा कि लिखा है,
जो लोग शांति का समाचार देते हैं और अच्छी बातों का समाचार लाते हैं, उनके पैर कितने सुंदर हैं।
लेकिन सभी लोगों ने खुशी की खबर को स्वीकार नहीं किया, जैसा कि यशाया कहता है,
प्रभु हमारे सुसमाचार पर किसने भरोसा किया है।
इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से है, परंतु मैं पूछता हूं कि उन्होंने क्यों नहीं सुना। हाँ, बिल्कुल सुना है, क्योंकि लिखा है,
प्रभु की वाणी पूरी पृथ्वी पर और उनके शब्द विश्व के अंत तक पहुंचे हैं।
किंतु मैं कहता हूं, क्या इसराइल को यह मालूम नहीं है? पहले मूसा कहता है,
जो लोग एक देश नहीं हैं, उनके द्वारा मैं तुम्हें ईर्ष्यालु बनाऊंगा, एक मूर्ख देश द्वारा मैं तुम्हें क्रोधित करूंगा।
परंतु यशाया बहुत साहसी है और कहता है,
जो मुझे ढूंढ नहीं रहे थे उन्होंने भी मुझे पा लिया, जिन्होंने मेरे बारे में पूछा तक नहीं उन पर मैं प्रकट किया गया।
किंतु इसराइल के बारे में वो कहता है, काफी समय तक मैं अपने हाथ हुक्म न मानने वाले और बलवा करने वाले लोगों के सामने फैलाए इंतजार करता रहा। रोमियो अध्याय 11। इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ दिया है? बिल्कुल नहीं। मैं भी इसराइली, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं। जिन लोगों को परमेश्वर पहले से जानते थे, उनको परमेश्वर पिता ने नहीं छोड़ा है। एलिया के बारे में वचन क्या कहता है? क्या तुम्हें मालूम है? इसराइल के विरोध में वह इस तरह से दोहाई देता है और कहता है,
स्वामी, उन्होंने आपके नबियों को मार डाला है और आपकी वेदियों को तोड़ डाला है, केवल मैं बचा हूं और वे मुझे जान से मारना चाहते हैं।
परमेश्वर का उत्तर क्या था?
मैंने अपने लिए 7,000 लोगों को बचाकर रखा है, जिन्होंने अपने घुटने बाल देवता के सामने नहीं झुकाए हैं।
इसलिए इस समय भी दया के चुनाव के आधार पर कुछ लोग बच रहे हैं। यदि कृपा से, तो फिर कर्मों को कोई जगह नहीं, नहीं तो कृपा कृपा नहीं कहलाती। किंतु यदि यह कामों के अनुसार है, तो फिर यह असीमित दया के कारण नहीं, नहीं तो काम फिर कभी काम न रह जाते। फिर क्या, इसराइल को वह नहीं मिला जिसकी खोज में वे थे, किंतु चुने हुओं ने इसे हासिल किया। दूसरे सभी लोगों के मन सख्त हो गए, जैसा कि लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें एक सुस्त आत्मा दी है, ऐसी आंखें दी हैं जिनसे उन्हें दिखता नहीं, ऐसे कान जिनसे वे आज तक सुन नहीं पाते। दाऊद कहता है,
उनकी आशीषें उनके लिए एक फंदा, जाल और ठोकर खाने का पत्थर उनके किए का परिणाम हो, उनकी आंखें इतनी अंधकार में हो जाएं ताकि देख ना सकें, उनकी पीठ लगातार झुकी रहे।
इसलिए मैं कहता हूं, क्या वे इसलिए लड़खड़ाए कि गिर जाएं? बिल्कुल नहीं, बल्कि उनकी नाकामयाबी से उन्हें जलन करवाने के लिए मुक्ति गैर यहूदियों तक पहुंची है। अब यदि उनकी नाकामयाबी का अर्थ है संसार के लिए भरपूरी और नुकसान का अर्थ है गैर यहूदियों के लिए भरपूरी, तो सोचो कि अंत में जब वे परमेश्वरीय मुक्ति के इनाम को स्वीकार कर लेंगे, जो कितना अच्छा होगा। मैं तुम गैर यहूदियों से कह रहा हूं कि तुम ही लोगों को खुशी का संदेश देने मैं भेजा गया हूं, और मैं इसको एक बड़ी बात भी समझता हूं। किसी तरह से अपनी जाति बिरादरी के लोगों में जलन उत्पन्न करा सकूं और कुछ की मुक्ति करा सकूं, मेरी यही इच्छा है। यदि उनके इनकार किए जाने का अर्थ है दुनिया के लिए मुक्ति, तो उनके द्वारा मसीह का स्वीकार किया जाना मौत का जीवन में बदलना होगा। पहले फल के रूप में जो पहले चढ़ाया जाता है, यदि वो पवित्र है तो शेष बचा हुआ भी पवित्र ठहरा, यदि जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र ठहरेंगी। यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई हैं, और तुम जो कि जंगली जैतून के पेड़ में हो, डालियों में कलम किए गए और जैतून पेड़ की जड़ और तेल के भागीदार बन गए हो, डालियों के बारे में घमंड मत करना। यदि तुम घमंड करते हो तो ये याद रखना कि तुम जड़ को नहीं संभालते हो, लेकिन जड़ तुम्हें संभालती है। इसलिए तुम कहोगे, डालियां इसलिए तोड़ी गईं ताकि मैं कलम किया जाऊं। तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु वे अविश्वास के कारण अलग किए गए, और तुम विश्वास से स्थिर रहते हो। घमंड न करो, लेकिन डरो, इसलिए कि यदि परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की कठोरता और सीधाई को देखो। जो लोग नाकामयाब हुए उनके साथ कठोरता, किंतु तुम्हारे साथ सीधाई, यदि तुम उनकी करुणा में बने रहो, नहीं तो तुम भी हटा दिए जाओगे। और वे यदि अपने अविश्वास में बने नहीं रहेंगे तो कलम किए जाएंगे, इसलिए परमेश्वर उन्हें फिर से कलम करने के योग्य हैं। क्योंकि यदि तुम जंगली जैतून के पेड़ से काटे गए थे, जो स्वभाव से जंगली थे, और अपने स्वभाव के खिलाफ एक अच्छे जैतून के पेड़ में कलम किए गए, तो परमेश्वर और कितनी आसानी से ये स्वाभाविक डालियों की कलम उनके अपने जैतून के पेड़ में जोड़ेंगे। हे भाइयों बहनों, मैं इसलिए नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो, ताकि तुम अपने दृष्टि में बुद्धिमान न बनो। जब तक गैर यहूदियों की भरपूरी का समय न आए, तब तक इसराइल का अधूरा अंधापन है। इसलिए इसराइल बचाया जाएगा, जैसा कि लिखा है, छुड़ाने वाले सिय्योन से बाहर आएंगे और गंदे जीवन को याकूब से दूर करेंगे। मेरा उनसे यह न बदलने वाला वचन है, जब मैं उनके गुनाहों को उनसे दूर करूंगा। खुशी के संदेश के बारे में तुम्हारे कारण वे दुश्मन हैं, लेकिन परमेश्वर के चुनाव के बारे में पूर्वजों के वास्ते उनसे प्रेम किया गया है। परमेश्वर के वरदान और बुलाहट वापस नहीं ले लिए जाते हैं। जिस तरह तुम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, लेकिन उनकी आज्ञा न मानने पर अभी कृपा प्राप्त की है, यहां तक कि अभी तक ये आज्ञाकारी नहीं रहे हैं, ताकि तुम पर दिखाई गई कृपा से वे लोग भी कृपा प्राप्त कर सकें। इसलिए कि परमेश्वर ने उन सभी को अनाज्ञाकारिता में सीमित कर दिया है, ताकि वो सभी पर कृपा कर सकें। ओह, सृष्टिकर्ता के ज्ञान और बुद्धि की गहराई, उनके फैसले और तरीके रहस्यमय हैं।
परमेश्वर के विचार क्या है, ये किसने जान लिया है? कौन उनको सलाह दे सकता है? या
पहले किसने उनको दिया है, ताकि देने वाले को वापिस किया जाए?
इसलिए कि सब कुछ उनके लिए, उनकी शक्ति द्वारा और उनसे है, उनकी बड़ाई हमेशा तक होती रहे, ऐसा ही हो। रोमियो अध्याय 12। इसलिए हे भाइयों बहनों, परमेश्वर की कृपा याद दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपनी देह को एक जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद बलिदान करके चढ़ाओ, जो तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस दुनिया के समान मत बनो, लेकिन तुम्हारे मन के बदले जाने के कारण खुद बदलते जाओ, ताकि तुम परमेश्वर की सही, अच्छी और अपनाने लायक इच्छा की पुष्टि कर सको। उस बड़ी कृपा के कारण जो मुझे मिली, मैं तुम में से प्रत्येक को चेतावनी देता हूं, किसी भी व्यक्ति को अपने को दूसरे से बढ़कर नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर ने हर एक को जिस मात्रा से विश्वास दिया है, उसी आधार पर अपने को समझना चाहिए। जिस तरह हम सब की देह में तमाम अंग हैं और सभी अंगों का काम एक सा नहीं होता है, उसी तरह से संख्या में हम हालांकि बहुत हैं, किंतु मसीह की देह में एक हैं, और हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे के सहभागी हैं। मिलने वाली असीम कृपा के कारण हमें अलग अलग वरदान प्राप्त हैं। यदि भविष्यवाणी का दान है तो विश्वास के माप के अनुसार व्यक्ति भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का है तो वह सेवा में लगा रहे। यदि सिखाने का वरदान है तो सिखाने में लगा रहे। जो प्रोत्साहन देता है वह लोगों की हिम्मत बढ़ाए। जो भेंट देता है दिल खोल कर दे। जो अगुवाई करता है वह गंभीरता से करे। जो करुणा दिखाता है खुशी से करे। प्यार में दिखावा ना हो, बुराई से नफरत करो, अच्छाई को पकड़े रहो। भाईचारे के प्यार से एक दूसरे के लिए समर्पित रहो, जहां आदर की बात है अपने से अधिक दूसरों को सम्मान दो। अपने जोश में कम न होते जाओ, परंतु आत्मा में लगन से यीशु की सेवा करते जाओ। आशा में खुश रहो, सताव में धीरज रखो, प्रार्थना में बने रहो। पवित्र लोगों की जरूरतों को पूरा करो तथा आवभगत में आगे रहो। जो लोग तुम्हें सताते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, शाप नहीं लेकिन आशीर्वाद दो। जो लोग खुश हैं उनके साथ खुश हो, जो रोते हैं उनके साथ विलाप करो। एक दूसरे के साथ समान विचार रखो। अपने को दूसरों से अधिक अच्छा मत समझो, किंतु छोटे तबके के लोगों के साथ भी मेलजोल बनाए रखो। ऐसा मत समझो कि तुम ही बहुत बुद्धिमान हो। किसी के बुरा करने पर उससे बदला मत लो। सब लोगों की निगाह में जो उत्तम है उसी को महत्व दो। जहां तक हो सके यदि संभव है प्रत्येक के साथ शांति से रहो। प्यारे दोस्तों, बदला मत लेना लेकिन ये काम परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि प्रभु की कही ये बात लिखी है,
बदला लेना मेरा काम है, मैं चुकता करूंगा।
इसलिए यदि तुम्हारा दुश्मन भूखा है उसे खाना खिलाओ, यदि वो प्यासा है तो उसे पीने के लिए कुछ दो। ऐसा करने से तुम उसके सिर पर जलते कोयलों का ढेर रखोगे। बुराई से मत हारो लेकिन भलाई से बुराई को जीत लो। रोमियो अध्याय 13। प्रत्येक व्यक्ति को सरकार के बनाए हुए कानून को मानना चाहिए, इसलिए कि सब प्रकार का अधिकार परमेश्वर की ओर से है। जो भी अधिकारी गण हैं उन्हें परमेश्वर पिता ही ने नियुक्त किया है। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर के द्वारा रखे प्रबंध का विरोध करता है। जो लोग ऐसा करते हैं वे सजा पाएंगे, क्योंकि अधिकारी लोग अच्छे काम करने वालों को दंड नहीं देते हैं लेकिन बुरा करने वालों को। क्या तुम अधिकारी के डर के बगैर जीवन बिताना चाहते हो? तो जो कुछ भला है वह करो और वह तुम्हें शाबाशी देगा, इसलिए कि वह भलाई करने वालों के लिए परमेश्वर की ओर से तुम्हारा सेवक है। यदि तुम बुरा करते हो तो डरो, क्योंकि उसको सजा देने का अधिकार यों ही नहीं मिला है। वह परमेश्वर पिता का सेवक है ताकि बुरा करने वालों को सजा दे। इसलिए अपने विवेक के कारण तुम्हें अधिकारियों की बात माननी चाहिए, न कि सजा के डर से। इसी कारणवश तुम टैक्स चुकाते हो, क्योंकि वे परमेश्वर के सेवक के रूप में निरंतर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। इसलिए जिसका जो हक है उसे दो, जिसे टैक्स देना है उसे टैक्स दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसकी इज्जत करनी चाहिए उसकी इज्जत करो। आपसी प्यार के अलावा और किसी बात के कर्जदार न हो। जो दूसरों से प्रेम करता है उसने परमेश्वर के नियम शास्त्र को पूरा कर लिया है। आज्ञाएं जैसे तुम व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चुराना नहीं, झूठी साक्षी मत देना, लालच नहीं करना और दूसरी अन्य आज्ञाएं जो हैं, उन सब का निचोड़ इसमें है। तुम लोगों से उतना प्रेम करो जितना अपने आप से करते हो। प्रेम किसी का नुकसान नहीं करता, इसलिए जिसने प्रेम किया उसने परमेश्वर पिता के सारे नियमों का पालन किया। इसके अलावा तुम जानते हो कि यह समय कठिनाइयों का समय है और तुम्हें वास्तविकता को जानना है। हमारी मुक्ति हमारे विश्वास में आने के समय की तुलना में अब और अधिक नजदीक आ गई है। रात बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधेरे में किए जाने वाले कामों को छोड़ दें और रोशनी के हथियार पहन लें। आओ हम ऐसा जीवन जिएं जैसा दिन के प्रकाश का होता है। लीला क्रीड़ा, नशा, गलत यौन संबंध, अनियंत्रित काम वासना, झगड़ा और ईर्ष्या वाला जीवन नहीं, बल्कि यीशु मसीह को पहन लो और पुराने स्वभाव की अभिलाषाओं को पूरा करने का विचार मत करो। रोमियो अध्याय 14। जो विश्वास में नया है उसे अपना लो और मतभेद वाले विषयों पर वाद विवाद मत करो। एक ये मानता है कि सब कुछ खाया जा सकता है, दूसरा व्यक्ति मात्र साग सब्जी खाता है। इसलिए जो सब कुछ खाता है उसे उस व्यक्ति को नीचा नहीं समझना चाहिए जो सब कुछ नहीं खाता है। उसे दूसरे व्यक्ति की बुराई नहीं करनी चाहिए जो सब कुछ खाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे भी स्वीकार किया है। तुम कौन हो जो परमेश्वर के जन को दोषी ठहराओ? ऐसा व्यक्ति अपने प्रभु के सामने जिम्मेदार है, इसलिए कि परमेश्वर पिता उसे स्थिर रखने में सामर्थी हैं। एक व्यक्ति सोचता है कि एक दिन दूसरे से बेहतर है, दूसरा व्यक्ति सोचता है कि हर दिन समान है। इस विषय में प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में पूरा यकीन रखे। जो किसी दिन को खास समझता है वो यीशु के लिए ऐसा करता है, जो किसी दिन को खास नहीं समझता वह प्रभु के लिए ऐसा करता है। जो व्यक्ति सब कुछ खाता है वह यीशु के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देकर खाता है, वैसे ही जो व्यक्ति सब कुछ नहीं खाता है वह भी धन्यवाद के साथ ऐसा करता है। हम में से कोई भी अपने लिए न जीवित रहता और न ही मरता है, इसलिए यदि हम जीवित हैं तो यीशु के लिए, यदि मरते हैं तो यीशु के लिए, इसलिए चाहे हम जिएं या मरें हम यीशु के हैं। इसी कारणवश यीशु भी मर गए, जी उठे और जीवित हैं, ताकि वह मरे और जीवितों दोनों के स्वामी ठहरें। तुम अपने भाई को क्यों दोषी ठहराते हो या उसे नीचा क्यों समझते हो? क्योंकि हम सभी मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, जैसा लिखा है कि प्रभु का कहना है,
मैं जीवित हूं, हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा और प्रत्येक जीव परमेश्वर को मान लेगी।
क्योंकि हम में से हर एक अपना अपना हिसाब परमेश्वर को देगा, इसलिए आगे से हम किसी दूसरे पर दोष न लगाएं। हम ध्यान दें कि कोई व्यक्ति अपने भाई के जीवन में ठोकर का कारण या अड़चन न बने। मैं जानता हूं और यीशु मसीह के द्वारा निश्चित हूं कि कोई भी खाने की चीज अपने आप में अशुद्ध नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति किसी भोजन वस्तु को अशुद्ध समझता है उसके लिए वह अशुद्ध है। यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे खाने मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ से दुखित होता है तो तुम प्रेम का जीवन नहीं जी रहे हो। अपने भोजन के कारण उस व्यक्ति को नाश मत करो जिसके लिए मसीह मरे थे। तुम्हारी भलाई को बुराई समझकर निंदा न की जाए, इसलिए कि परमेश्वर पिता का राज्य खाना पीना नहीं किंतु परमेश्वर की निगाह में धर्मी ठहराया जाना शांति और खुशी है जो पवित्र आत्मा में होता है। जो इन बातों में मसीह की सेवा करता है उसे परमेश्वर स्वीकार करते हैं और उसे मनुष्यों के द्वारा सही ठहराया जाता है। इसलिए उन बातों को चाहो जिनसे भाईचारा पैदा हो और जिनसे हम एक दूसरे को मजबूत बना सकें। भोजन से परमेश्वर के काम को बर्बाद न करें। सब प्रकार की खाने की वस्तुएं बिल्कुल शुद्ध हैं, किंतु जो किसी को दुखित करके खाता है उसके लिए वे बुरी हैं। अच्छा यह है कि न मांस खाया जाए और न शराब पी जाए या ऐसी और कोई वस्तु जिसके सेवन से तुम्हारे भाई बहन को ठोकर लगे, वह नाराज हो जाए या कमजोर बने। तुम्हारा जो विश्वास है उसे अपने परमेश्वर के सामने बनाए रखो। आशीषित वह व्यक्ति है जो अपने आप को उस बात में दोषी नहीं ठहराता जिसे वो ठीक समझता है। जो व्यक्ति शक करते हुए खाता है वो दोषी ठहर चुका है, क्योंकि उसका बर्ताव विश्वास पर नहीं टिका हुआ है। जो व्यवहार विश्वास से नहीं है वो अपराध है। रोमियो अध्याय 15। हम जो मजबूत हैं हमें कमजोर लोगों को सहारा देना चाहिए, बजाय इसके कि अपने आप को खुश करने का अवसर ढूंढते रहें। हम में से हर एक जन अपने पड़ोसी की भलाई सोचे तथा उसकी उन्नति के लिए कोशिश करे। यीशु ने भी अपने आप को खुश करना नहीं चाहा, जैसा कि लिखा है,
जो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं उनकी बेइज्जती मुझ पर आ गिरी है।
जो बातें पहले लिखी गई थीं वे हमारे सिखाने के लिए थीं, ताकि हम धीरज और वचन से साहस पाकर आशा रखें। अब धीरज और प्रोत्साहन के पिता परमेश्वर मसीह यीशु के नमूने के समान तुम सभी को एक दूसरे के लिए सहानुभूति दें, ताकि तुम सभी एक मन और एक मुंह से प्रभु यीशु मसीह के पिता को आदर दे सको। इसलिए परमेश्वर के सम्मान के लिए जैसा यीशु ने तुम्हें अपनाया है, तुम भी एक दूसरे को अपना लो। अब मैं कहता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर के सत्य के लिए यहूदियों के लिए सेवक बने, ताकि पूर्वजों को दी गई प्रतिज्ञाओं की पुष्टि हो सके, और ये भी कि गैर यहूदी परमेश्वर की दया के लिए उन्हीं की प्रशंसा करें, जैसा कि लिखा है, इस कारणवश गैर यहूदियों के सामने मैं तुम्हें मान लूंगा ताकि तुम्हारे नाम के गीत गाऊं। वो फिर कहते हैं,
हे गैर यहूदियों, परमेश्वर के लोगों के साथ आनंदित हो। फिर से सभी गैर यहूदियों, याहवे की स्तुति करो, सभी लोग उनकी महिमा करें।
पुनः यशायाह भविष्यवक्ता कहता है,
दाऊद का वंश सदा बना रहेगा, वह गैर यहूदियों के ऊपर शासन करेंगे, गैर यहूदी उन पर भरोसा रखेंगे।
विश्वास करने के कारण अब आशा के दाता तुम्हें आनंद और शांति से भर दें, ताकि तुम पवित्र आत्मा की शक्ति से आशा में उमड़ते रहो। मेरे भाइयों बहनों, मैं स्वयं तुम्हारे बारे में बेफिक्र हूं कि तुम भी भलाई और ज्ञान से भरे हो और एक दूसरे को सिखाने के लायक हो। फिर भी भाइयों बहनों, कुछ विषयों पर परमेश्वर पिता की कृपा के कारण मैंने हिम्मत के साथ यह याद दिलाने के लिए लिखा है कि मैं गैर यहूदियों के बीच सुसंदेश देने वाला यीशु मसीह का सेवक बनूं, ताकि पवित्र आत्मा द्वारा शुद्ध किए जाने से गैर यहूदियों का समर्पित किया जाना ग्रहण योग्य हो। इसलिए परमेश्वर की बातों में खुश होने के लिए मेरे पास यीशु मसीह में ही कारण है। गैर यहूदियों को आज्ञाकारी बनाने के लिए मसीह ने जिन बातों को मेरे द्वारा नहीं किया है, उनमें से किसी बात को कहने के लिए मैं हिम्मत न करूंगा, ताकि जो वचन और कार्य की शक्ति अद्भुत कामों और चिन्हों में दिखाई दी, मैंने बिना किसी सीमा के मसीह के सुसमाचार को यरूशलेम और उसके बाहर के जिलों में परिश्रम से इलुरिकुम तक सुनाया। मैंने अपना लक्ष्य ये बनाया है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं पहुंचा है, वहां सुसमाचार पहुंचाऊं, ताकि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की नींव पर इमारत न बनाऊं। किंतु ऐसा लिखा है,
जिनके बारे में कहा नहीं गया वे देखेंगे, जिन्होंने सुना नहीं वे समझेंगे।
इस कारणवश भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका, लेकिन अब इन सभी क्षेत्रों में सुसमाचार पहुंचाए जाने और बहुत वर्षों से मिलने की इच्छा के कारण मैं स्पेन आऊंगा और मिलूंगा। मेरी आशा है कि मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ समय बिताऊं और फिर तुम मुझे आगे पहुंचा दो। अभी मैं यरूशलेम के पवित्र लोगों की सेवा के लिए वहां जा रहा हूं, क्योंकि मकीदुनिया और अखाया के लोगों को यह अच्छा लगा था कि वे यरूशलेम के पवित्र लोगों के बीच गरीबों के लिए कुछ इकट्ठा करें। सच पूछो तो ये उन्हें अच्छा लगा, और वे यरूशलेम के लोगों के कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि गैर यहूदियों को उनसे आत्मिक फायदा मिला है, तो उनकी जिम्मेदारी ये है कि धन से उनकी मदद करें। इसलिए जब मैं ये कार्य पूरा कर लूंगा और उन्हें ये मदद मिल जाएगी, तो तुम्हारे पास से होता हुआ स्पेन जाऊंगा। मुझे निश्चय है कि जब मैं तुम्हारे पास आऊं, तो मसीह के सुसमाचार की आशीष की भरपूरी में आऊं। मैं यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के प्रेम के कारण तुमसे विनती करता हूं कि परमेश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करने में लगे रहो, ताकि मैं यहूदिया नगर में अविश्वासियों के हाथों से छुड़ाया जाऊं और यरूशलेम के लिए मेरी सेवा पवित्र लोग स्वीकार कर सकें। परमेश्वर की इच्छा द्वारा मैं बड़ी खुशी के साथ तुम्हारे पास आ सकूं और तुम भी उत्साहित हो जाओ। अब शांति के पिता तुम सब के साथ रहें, ऐसा ही हो। रोमियो अध्याय 16। किंख्रिया की मंडली में फीबे नामक एक बहन है जो तारीफ के योग्य है। जैसा कि पवित्र लोगों को करना चाहिए, इस बहन को अपनाओ और उसकी जो भी जरूरत हो उसे सहयोग दो, इसलिए कि वह मेरे और दूसरों के लिए मददगार ठहरी है। मेरे मददगार प्रिसिल्ला और अक्विला को सलाम कहो, और मेरी खातिर उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली। केवल मैं उन्हीं के प्रति नहीं लेकिन सभी गैर यहूदी कलीसियाओं का आभारी हूँ। इसी तरह जो चर्च उनके घर में आराधना करता है उसे मेरा आशीर्वाद। मेरे प्रिय इपैनितुस को सलाम, जो एशिया में मसीह के पास आने वालों में पहला है। मरियम, जिसने हमारे लिए बहुत परिश्रम किया, उसे सलाम। अंद्रुनिकुस और यूनियास, जो मेरे रिश्तेदार और संगी कैदी हैं, जो प्रेरितों में जाने माने हैं और मुझसे पहले मसीह में थे, उन्हें शांति मिले। अम्पलियातुस, जो यीशु में मेरा प्यारा है, उसे सलाम। सहायक उर्बानुस और इस्तखुस, जो मसीह में मेरे प्रिय हैं, मेरा सलाम। मसीह में प्रिय अपिल्लेस और अरिस्तबुलुस के कुटुंब को सलाम। मेरे रिश्तेदार हेरोदियन को सलाम। नरकिसुस का कुटुंब, जो यीशु में है, उन्हें सलाम। त्रुफेना, त्रिफोसा, जो यीशु के लिए मेहनत करते हैं, उन्हें सलाम। परसिस, जिसने यीशु के लिए कठोर मेहनत की है, उसे सलाम कहना, मसीह में चुने हुए। रूफुस और मरियम और मेरी और उसकी माँ को सलाम। असुनक्रितुस, फिलगोन, हिरमेस, पत्रुबास, हिरमास और जो भाई उनके साथ हैं, उन्हें आशीर्वाद। फिलुलुगुस, जूलिया, नेयुर्स और उसकी बहन उलुम्पास और जो पवित्र लोग उनके साथ हैं, उन्हें सलाम। आदर के साथ एक दूसरे को अपना प्यार दिखाओ। यीशु मसीह के सभी चर्च तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। हे भाइयों बहनों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग तुम्हारे बीच दी गई शिक्षा के विपरीत फूट और सेवा में रुकावट डालते हैं, उन्हें पहचानो और उनसे दूर रहो, इसलिए कि ऐसे लोग हमारे मसीह यीशु की सेवा नहीं करते हैं लेकिन अपने पेट की। वे अपनी चापलूसी और मीठी बातों से सीधे लोगों को धोखा देते हैं, क्योंकि तुम्हारे आज्ञा मानने के बारे में सभी जानते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे विषय में खुश हूं, किंतु मैं चाहता हूं कि तुम भलाई के बारे में बुद्धिमान बनो और बुराई के विषय में भोले बनो। और शांति के कर्ता परमेश्वर बहुत जल्दी ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देंगे। हमारे स्वामी यीशु मसीह की असीम कृपा तुम्हारे ऊपर होती रहे, ऐसा ही हो। मेरा सहकर्मी तिमोथी और रिश्तेदार लूकियस, जेसन और सोसिपत्रुस तुम्हारी कुशलता की कामना करते हैं। मैं तृतीयस, जिसने ये पत्र लिखा है, तुम्हें सलाम कहता हूँ। मेरी और पूरे चर्च की पहुनाई करने वाला गयुस तुम्हें सलाम कहते हैं। शहर का प्रबंधक इरास्तुस और भाई क्वार्तुस सलाम कह रहे हैं। हमारे स्वामी मसीह यीशु की असीमित कृपा तुम्हारे साथ हो। मेरे खुशी के संदेश के अनुसार मसीह का संदेश, जो तुम्हें स्थिर कर सकता है उस भेद के खुलने के द्वारा जो युगों से छुपा हुआ था, परंतु अब हमेशा हमेशा के परमेश्वर के आदेश से भविष्यवक्ताओं के लेख द्वारा विश्वास की आज्ञाकारिता के लिए पूरी तरह सामने आया है। केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो बुद्धिमान है, यीशु मसीह के द्वारा सदा काल तक सारी बड़ाई और सारा आदर पाएं, ऐसा ही हो।